नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पारसारथी। मोना जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। तन्वी शर्मा ने ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। मालविका बंसोड़ और ईशारानी बरुआ आज होंगी आमने सामने। रिधिमा दिलावरी ने प्रो गोल्फ टूर के छठे चरण का खिताब अपने नाम किया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में। और तीसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। चर्चा करते हैं बैडमिंटन पर। तन्वी शर्मा ने ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तन्वी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज नात्सुकी निदेरा को 21-14, 21-14 से हराया। वन साइडेड ही कहें मुकाबले को, क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लगातार अच्छा करते आ रही तन्वी शर्मा।
बिल्कुल, लगातार अच्छा करती आ रही है। और बैडमिंटन में जूनियर सर्किट पे जो युवा खिलाड़ियों में पिछले एक साल में अगर देखें तो तन्वी शर्मा का नाम बार बार सामने आता है। और ये सतत अच्छा प्रदर्शन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जैसे अक्सर बात करते हैं कि साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद जो अब अगली पीढ़ी है, जो जिनमें ओलंपिक मेडल का पोटेंशियल दिखता है, वैसी पौध तैयार करनी होगी। तो उस दिशा में अगर युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो भारतीय बैडमिंटन के लिए बहुत अच्छा संकेत है।
और श्रोताओं, आपको बता दें कि तन्वी शर्मा ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। यूएस ओपन 2025 सुपर 300 के फाइनल में पहुंचकर वर्ल्ड टूर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बनी। वहीं टीम इवेंट 2024 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी रही थी। वहीं एक अन्य मुकाबले में आज मालविका बंसोड़ और ईशारानी बरुआ आमने सामने आएंगी। कोई ना कोई एक भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल में खेलते नजर आएंगे,
और वो अक्सर होता है भारतीय खिलाड़ियों के साथ कि एक ऐसे ड्रॉ निकलते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने ही हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी भी स्थिति है कि भारतीय खिलाड़ियों का इतना दबदबा है कि वहां तक दो खिलाड़ी आमने सामने, लेकिन यहां से कोई ना कोई एक बाहर होगा, वरना दोनों का प्रदर्शन जिस तरीके का रहा है तो आगे बढ़ना चाहिए था।
जी, वहीं पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में आज एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसकरूनन को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को लियो रॉली कोर्नाडो और बागस मौलाना ने 21-12, 22-20 से हराया था। उम्मीदें की जा रही थी इस जोड़ी से भी, क्योंकि सात्विक और चिराज इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन निराश किया उन्होंने।
जी, पहले गेम में तो बिल्कुल ही निराश किया, दूसरे में हालांकि वापसी की बहुत कोशिश की और सिर्फ 2 अंक के अंतर से ये तीसरे गेम तक नहीं जा पाया। और बिल्कुल भारत के जो शीर्ष खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, चाहे वो पीवी सिंधु हो, चाहे वो लक्ष्य सेन हो, चाहे वो सात्विक और चिराग हो। कि सुपर 300 कैटेगरी का ये टूर्नामेंट है, लक्ष्य सेन भी इसमें नहीं है। जैसे आपको पता है कि बैडमिंटन में जो टॉप मोस्ट कैटेगरी होती है वो 1000 जो का टूर्नामेंट होता है, लेकिन ये 300 का है। तो अगले सही समय पर पीक करने के लिए बहुत से खिलाड़ियों ने इससे बाहर रहना उचित समझा। और पीवी सिंधु की जहां तक बात करें तो जो दुबई में वो फंस गई थी, उसके बाद से जो उन्होंने ब्रेक लिया है एक तरीके से कहा जाए तो, क्योंकि अब LA को नजर में रख के सारे टूर्नामेंट पर खेले जाएंगे। और वहां पर ये बहुत जरूरी है कि जो खिलाड़ी हैं, शीर्ष खिलाड़ी हैं, वो सही समय पर पीक करें।
जैसा आपने बताया कि सुपर 1000 टूर्नामेंट अहम हो जाता है, तो ऐसे में ये सुपर 300 या सुपर 100 जो युवा खिलाड़ियों के लिए कितना अहम टूर्नामेंट हो जाता है। जैसे तन्वी शर्मा भी सेमीफाइनल पहुंची है, उम्मीद करेंगे कि खिताब भी जीते वो।
देखिए, युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी खिताब जो है वो उत्साहवर्धन करने वाला होता है। और शुरुआत सभी की इस कैटेगरी के टूर्नामेंट से ही होती है। आप एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट तो है ही, तो यहां पर आप अगर खिताब जीतते हैं तो इससे जरूर मनोबल बढ़ता है।
जी, चर्चा कर लेते हैं गोल्फ पर। रिधिमा दिलावरी ने महिला प्रो गोल्फ टूर के छठे चरण का खिताब अपने नाम किया। रिधिमा ने दूसरा और चौथा चरण भी जीता था। अब छठा चरण जीतकर रिधिमा ने हीरो ऑर्डर ऑफ मेरिट में अपनी बढ़त बना रखी है। वर्तमान सीरीज का पहला चरण जीतने वाली जैस्मिन लगातार दूसरे बार दूसरे स्थान पर रही। अश्रोता, आपको बता दें कि रिधिमा ने खराब शुरुआत के बाद शानदार वापसी करते हुए आज लगातार तीसरी बार 71 का स्कोर बनाया। छत्तीसगढ़ 25 मार्च से 3 अप्रैल तक होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। ये प्रतियोगिता रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में आयोजित होगी, जिसमें देश भर से करीब 3,700 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
ये पहली बार है जब राष्ट्रीय स्तर पर ट्राइबल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ इन खेलों की मेजबानी करेगा। छत्तीसगढ़ को इस आयोजन की मेजबानी ट्राइबल गेम्स परंपराओं और पिछले सफल आयोजन जैसे बस्तर ओलंपिक्स और सरगुजरा ओलंपिक्स के कारण मिली है। प्रतियोगिता में कबड्डी और मल्लखंब को प्रदर्शन खेल के रूप में दिखाया जाएगा। रायपुर में हॉकी, फुटबॉल, तैराकी, वेट लिफ्टिंग और तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं होंगी। जगदलपुर में एथलेटिक्स के मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि अंबिकापुर में प्रतियोगिता होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 23 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी किरण बिस्टा भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। किरण ने साल 2025 में एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। किरण के साथ युवा खिलाड़ी राशि पोयाम, मदवाई पूजा और श्रद्धा प्रधानी भी प्रतिस्पर्धा करती दिखेंगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लगभग 5 करोड़ रूपए की लागत से सिंथेटिक हॉकी टर्फ बनाया गया है। महासमुंद में 6.5 करोड़ रूपए से अधिक की लागत से सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक तैयार किया गया है। वहीं जगदलपुर में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान बनाया गया है, जिसमें दौड़ने के लिए ट्रैक भी शामिल है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
छत्तीसगढ़ की बात कर ले हम, झारखंड की बात कर ले, जो ट्राइब को लेकर हम चल रहे हैं, तो इन सब राज्यों में भी जो खेल का जो उदय हो रहा है, ये भी अच्छी खबर है खिलाड़ियों के लिए।
देखिए, सबसे अच्छी खबर तो ये है कि खेलो इंडिया का जो दायरा है वो कितना विस्तृत होता जा रहा है। जनवरी में बीच गेम्स हुए थे दीव में, उसके बाद शीतकालीन हमने वो आइस और स्नो गेम्स देखे गुलमर्ग में, लद्दाख में, उसमें भी काफी अच्छा उत्साहवर्धक प्रतिनिधित्व रहा खिलाड़ियों का। और उसके बाद अब पहली बार ट्राइबल गेम्स होने जा रहे हैं, तो दूर दराज जगदलपुर, अंबिकापुर, आज तक जो है हम अक्सर नक्सलाइट बेल्ट ये है और इसके लिए ही जाने जाते थे, लेकिन आप देखिए 3,500 से ऊपर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना वहां डेवलप हो रहा है और कितनी प्रतिभाएं वहां से निकलेगी। आप देखिए कि सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ जिसको कहते हैं वो लगाया गया है, एथलेटिक्स टर्फ लगाया गया है, फुटबॉल के लिए सिंथेटिक टर्फ लगाया गया है, और ये सारी सुविधाएं खेलों के बाद भी जारी रहेंगी और वहां खिलाड़ियों को इतने मूलभूत सुविधाएं जो अच्छी मिलेगी, तो निश्चित तौर पर वहां से जो है काफी टैलेंट ट्रैप होगा भारत के लिए, क्योंकि हम ओलंपिक की मेजबानी की आकांक्षा रखते हैं और राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि देश के विभिन्न कोनों से हमारे पास अच्छी प्रतिभाएं हर खेल में आए। तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि जो ट्राइबल बेल्ट है, हॉकी में तो ट्राइबल बेल्ट को अगर हम कहें कि हॉकी की नर्सरी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसी तरह से दूसरे खेलों में भी हर जगह से प्रतिभाएं सामने आए और खेलों का प्रचार भी होगा इससे वहां, क्योंकि आप अपनी प्रदेश में, अपने शहर में इस तरीके का बड़ा भव्य आयोजन अगर देखते हैं तो कई खिलाड़ी प्रेरित होते हैं खेलों में करियर बनाने के लिए।
और जब से ये सरकार आई, हम देखेंगे कि पैरा गेम्स हो या फिर ब्लाइंड क्रिकेट को भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है, और अब ट्राइबल गेम्स को भी, तो लगातार सरकार भी इस खेलों के प्रति अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रही है,
और वो भी ऐसे भी खेलों में जिसमें भारत का बहुत ज्यादा कोई इतिहास नहीं रहा है अच्छे प्रदर्शन का, उन खेलों को भी प्रमोट करना सरकार का लक्ष्य रहा है। क्योंकि मैंने सुना था पिछले कुछ समय पहले खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी ने कहा था कि जैसे बीजिंग ने जब ओलंपिक की मेजबानी बीजिंग को मिली तो उन खेलों पर फोकस किया जो पारंपरिक रूप से जहां उसका स्ट्रांग होल्ड नहीं है, और ऐसे खेलों में उसने कई सारे स्वर्ण पदक जीते। तो भारत भी अब मैं धीरे धीरे देखिए आपकी ऐसे खेलों की ओर भी अपना ध्यान बढ़ा रहा है कि जहां पर पारंपरिक रूप से हमारा प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उसमें भी अब प्रतिभाएं सामने आने लगी हैं।
चर्चा कर लेते हैं स्क्वाश पर। इंडियन ओपन स्क्वाश महिला वर्ग के क्वार्टर फाइनल में अनाहत सिंह का मुकाबला सहवित्रा कुमार से जारी है। अनाहत सिंह ने कल सिंगल्स मुकाबले में फरीदा वालिद को 3-0 से हराया था। वहीं पुरुष क्वार्टर फाइनल में आज अभय सिंह का सामना यासीन सोहदी से होगा। लगातार जैसे हमने तन्वी शर्मा की भी बात की, तो ये भी उभरती खिलाड़ी है 17 साल की और लगातार अच्छा प्रदर्शन करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
बिल्कुल, राष्ट्रमंडल खेल में सिर्फ 14 साल की थी जब इन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई थी, और इतनी कम उम्र में इतनी परिपक्व पक्वता इन्होंने हासिल की है और अभी आपको जैसे पता होगा कि लॉस एंजलिस ओलंपिक का हिस्सा है स्क्वैश
जी,
तो एक लगातार अच्छे प्रदर्शन की जरूरत है और भारत की एक पदक उम्मीद के रूप में भी उभर सकती है
जी। और श्रोताओं आपको बता दें कि स्क्वैश ऑन फायर 2026 में अनहत ने अपना पहला पीएसए ब्रॉन्ज लेवल खिताब भी अपने नाम किया था। वहीं वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जो जुलाई 2025 में हुआ था उन्होंने काहिरा में उसमें कांस्य पदक जीता था। वहीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो अगस्त में हुआ था उसमें महिला सिंगल्स का भी खिताब जीतकर उन्होंने भारत का मान बढ़ाया था। चर्चा कर लेते हैं फुटबॉल पर। भारत की 24 सदस्यीय अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम अगले महीने होने वाले एएफसी अंडर 20 महिला एशियाई कप के लिए आज बैंकॉक पहुंची। 20 साल बाद एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय टीम 2 अप्रैल को जापान से मुकाबला करेगी। कितना अहम होगा ये टूर्नामेंट?
बहुत ही अहम है क्योंकि आप देखिए यहाँ से वर्ल्ड कप जो इस एज ग्रुप का है उसके कोटा निर्धारित होने वाले हैं। जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी हर ग्रुप से टीम वो यहां से जो क्वार्टर फाइनल जीतेगी और जो सेकंड थर्ड प्लेस की बेस्ट टीम होंगी उनको सीधे जगह मिलेगी। तो भारत ने वैसे भी 2 दशक बाद यहाँ क्वालिफाई किया है और काफी सारी उम्मीदें टिकी होंगी क्योंकि सिर्फ क्वालिफाई करना मकसद नहीं है। भारतीय टीम पूरी तैयारी के साथ आई है, बेंगलुरु में, स्वीडन में, कोलकाता में, हर जगह कड़ा अभ्यास किया है स्वीडिश कोच के साथ। तो यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि क्वालिफिकेशन से जो मनोबल बढ़ा होगा यहाँ जरूर भारतीय टीम कुछ मैच जीतकर उसे और आगे ले जाना चाहेंगे।
चर्चा कर लेते हैं क्रिकेट पर। तीसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 22 गेंद शेष रहते ही 2 विकेट के नुकसान पर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। टॉम लेथम ने नाबाद 63 रन की पारी खेली। वहीं डेवॉन कॉनवे ने 39 रन बनाए। लॉकी फर्गुसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लॉकी ने 4 ओवर में महज 2.2 की इकोनॉमी रेट से 9 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। काइल जेमिसन, मिचेल सैंटनर और बेन सियर्स ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। वहीं 5 मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड 2-1 से आगे है। लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है न्यूजीलैंड का इस श्रृंखला में।
बिल्कुल अच्छा रहा है पूरे T20 फॉर्मेट में ही। आप देखिए न्यूजीलैंड का प्रदर्शन, अभी वर्ल्ड कप हुआ है, हमने फाइनल खेला है, हमने देखा है किस तरीके का। और खासतौर पे यहाँ तारीफ करने की लॉकी फर्ग्यूसन की कि T20 बल्लेबाजों का प्रारूप है और 4 ओवर में 9 रन देकर उन्होंने विकेट चटकाए। 6 गेंदबाजों को न्यूजीलैंड ने आजमाया और सबको विकेट मिले, तो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लिए उतना ही निराशाजनक है। विश्व कप में भी हमने देखा कि अपराजेय रही पूरे टूर्नामेंट में टीम और जिस तरीके से सेमीफाइनल का प्रदर्शन रहा, तो यहां भी बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया और 63 रन पे आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। तो यहां पर मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका को पिछले कुछ अरसे में प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ था, वर्ल्ड चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप और सब कुछ ठीक जा रहा था, वर्ल्ड कप फाइनल भी खेले, लेकिन फिर वो जो एक चोकर वाली बात आती है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाती है कि अहम मुकाबलों में जो चोक कर जाते हैं, इस पर मुझे लगता है कि काम करना होगा
जी। और चर्चा कर लेते हैं वहीं आईपीएल पर। आगामी आईपीएल 1 दिवसीय विश्व कप के मद्देनजर अहम साबित होगा। आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन से खिलाड़ी 1 दिवसीय विश्व कप में चुने जाने के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे। 5 राष्ट्रीय चयनकर्ता 28 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में खिलाड़ियों पर नजर रखेंगे। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति में एसएस दास, आरपी सिंह, अजय रात्रा और प्रज्ञान ओझा शामिल हैं। काफी अहम होगा ये आईपीएल क्योंकि जितना अच्छा प्रदर्शन होगा खिलाड़ियों का उतना ही अहम होगा जो अगले साल विश्व कप होना है साउथ अफ्रीका में, तो उसमें चयन के लिए।
बिल्कुल, अगले साल विश्व कप होना है 2028 में, T20 विश्व कप होना है, लॉस एंजलिस ओलंपिक है जिसमें क्रिकेट होगा, तो काफी सारे बैक टू बैक बड़े टूर्नामेंट है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कोर ग्रुप तैयार कर लिया गया होगा अब तक और नजरें रहेगी उन्हीं खिलाड़ियों पर जहां जहां गैप फिल करने वाले होते हैं वहां क्या क्या संभावनाएं हो सकती है और सारे चयनकर्ता पूरे आईपीएल के दौरान काफी सक्रिय रहने वाले हैं
जी। और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मोना जी आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद,
शुक्रिया।
और श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।